नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है केंद्र राज्य के कमजोर होते संबंध का जिम्मेदार कौन। भारतीय संविधान में भारत को राज्य के सघन के रूप में संबोधित किया गया है। इसके विपरीत विधा संविधान में कहीं भी महासंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघवाद सत्ता का वह स्वरूप है जहाँ सत्ता एक से ज्यादा स्तरों पर बटी हुई है। आज हमारे साथ लखनऊ हाई कोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधि विभाग के कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट इंद्र प्रताप सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी
हमारी तरफ से आपको और आपके श्रोताओं को सादर प्रणाम।
सर, केंद्र सरकार के जो राज्यों से जो संबंध है उसको लेकर जिम्मेदार कौन है सर?
देखिए, यह है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अपने बजट हैं
सर,
और संविधान में अपने अपने हिसाब से सबको कार्य करने की छूट है। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के पास रहते हैं और वो केंद्र सरकार उनका बंटवारा राज्यों की पॉपुलेशन और उनकी जरूरत के हिसाब से करती रहती है। इधर इधर विगत वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है कि केंद्र की जो राजनीति है और जो प्रदेशों की राजनीति है, इनकी राजनीतियों में अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो जैसे आजकल बहुत मशहूर है एक शब्द, डबल इंजन की सरकार। डबल डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि जो सरकार केंद्र सरकार में है उसी पार्टी की सरकार राज्य सरकार में है, तो दोनों मिल करके काम करते हैं और ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं यहाँ पर और हमारी डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर। तो ये चीजें जो है, ऐसी बातें जो है, वो जो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टियों की सरकार है वो सरकार उनकी पॉलिसी, उनके सिद्धांत उनसे कुछ अलग हैं। तो अगर वो उनके केंद्र सरकार के द्वारा किसी पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके सिद्धांतों और जिसकी वजह से जनता ने उनको चुना है वो बीच में अड़े आ जाता है, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उस तरीके से जैसे चलने चाहिए वैसे चल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वित्तीय आदान प्रदान में बाधा आती है और उसका नुकसान जनता को भी उठाना पड़ता है।
जी
जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मुझे सबसे प्रिय राज्य लगता है उड़ीसा। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हैं।
जी सर
नवीन पटनायक जी वर्षों से वहां पर जो है लोकतंत्र में बने हुए हैं और मैं कभी विवादों में नहीं रहते। वो उनका एक काम है अपनी जनता का किसी भी तरीके से विकास करें, वो जितना हो सके उतना करें। केंद्र से जो उनके संबंध है, बनाने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो उनकी कुशल राजनीतिक, जो एक कुशल राजनीतिक के रूप में जैसा होता है, वो कभी विवादों में नहीं आते। तो हर प्रदेश, जैसे कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ममता जी का जो सैद्धांतिक विचारधारा है, उनके पार्टी की जो विचारधारा है, वो केंद्र सरकार की विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट है। अब वहां पर तमाम योजनाएं केंद्र सरकार ने ऐसी चलाई जो उनको लगता है कि ये किसी वर्ग विशेष के लिए है या क्षेत्र विशेष के लिए है, जो हमको अगर इसको अडॉप्ट करें तो हमको नुकसान कर सकती है। तो केंद्र सरकार उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार हमारी चीजों को अडॉप्ट ही नहीं कर रही है, और राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार हमको इस तरीके से उत्पीड़न करती है कि कुछ चीजें हम लागू ही नहीं कर सकते उनकी। तो ये सब चीजें बहुत प्रभावित करती हैं।
जी सर
एक तो जो मतलब विचारधारा प्रभावित करती है, दूसरी चीज होते हैं राजनीतिज्ञों के आपसी संबंध प्रभावित करते हैं। और आज के दौर में तमाम राजनेता ऐसे हैं कि जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न कानूनों में के जाल में समझ लीजिए एक तरीके से फंस गए हैं, तो उनकी पर्सनल इनमिटी भी रहती है, वो भी काम करती होगी, जो मेरे समझ में आता है कि वो केंद्र राज्य के संबंधों को प्रभावित करती होगी। जैसे लालू जी का है वो बिहार में, अब लालू जी का बिहार में है तो फिर वो केंद्र से उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो फिर वो सब चीजें, तमाम चीजें प्रभावित कर सकती
जी सर। सर,
हैं।
अभी हाल ही में आप उत्तर प्रदेश में हैं, सर उत्तर प्रदेश में सर केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, उसमें सर पारदर्शिता रूप से एक मतदाता के रूप में मतदाता किस तरीके से योजनाओं को समझे सर, उसकी पारदर्शिता को सर?
देखिए, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में हूँ,
जी
उत्तर प्रदेश में ये मैं महसूस करता हूँ कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं और जो राज्य सरकार की पॉलिसीज हैं, दोनों चूंकि एक ही सिद्धांत की पार्टियां हैं, दोनों एक ही चीज, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बहुत कुछ, कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य में केंद्र सरकार की भूमिका रहती है और राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो बार बार जो है वो भारत सरकार के, वो जो है वो भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं या उनके लोगों की सहयोग और सराहना किया करते हैं कि उनकी तरफ से पॉलिसीज लागू हो रही हैं और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, जनता में, पब्लिक में उसका विकास कर रहे हैं। लेकिन इधर विगत कुछ दिनों में जो नया सिनेरियो एक बन के सामने आया है, वो सबसे बड़ा सिनेरियो ये निकल के आया है कि जनता इस समय सबसे ज्यादा परेशान अगर है तो महंगाई से परेशान है उत्तर प्रदेश में, और बेरोजगारी से भी परेशान है। जो सबसे बड़ी समस्या इस समय उत्तर प्रदेश की है वो है बेरोजगारी और महंगाई। जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास सिर्फ रोज कमा के और कलेक्ट करना है, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उनके लिए इधर कुछ विगत सालों से महंगाई ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जो गाड़ी से चलने वाला है, कार से चलने वाला है, जो कभी अपने गांव में या अपने क्षेत्र में या कहीं मिलने जुलने के लिए जाना चाहता है, उसको पेट्रोल की भी बड़ी कीमतें देनी है, सीएनजी का दाम जो है लगभग डीजल डीजल के दाम के बराबर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि तमाम चीजें, फ्रूट महंगे हो गए हैं, डबल, जैसे यहाँ केला 80 रुपए दर्जन बिक रहा है, अगर अच्छा केला आप खरीदते हैं तो 80 रुपए दर्जन है, आप सेब खरीदते हैं तो 250 रुपए किलो है अच्छा सेब। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो अगर अपने कहीं पर उसको आना आने जाने की प्रोसेस है, जैसे अपने घर से दूसरे के घर में जाना, दूसरे से मिलने के लिए जाना चाहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका मतलब हर प्रकार से उसके ऊपर महंगाई की मार है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की, दूसरी तरफ सामान और वस्तुओं की कीमत की महंगाई की मार, और इस तरीके से ये सिनेरियो बदला है यहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार जरूर है, और लेकिन उसका प्रभाव जनता में अंदर अंदर अब दिखने लगा
जी सर।
है।
मेरा अगला सवाल था कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार कई अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखते हैं आप, उसमें अध्यादेश भी देखते हैं सर, ये सारी प्रक्रियाओं को आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंधों और इसकी जिम्मेदारी किस तरीके से सर देखते हैं सर, इन सभी चीजों को?
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक किसी पार्टी की तरफ से नहीं, एक निष्पक्ष अधिवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। अगर हम किसी पार्टी की सरकार को किनारे रख दें तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र है, और दिल्ली में ही हमारे देश की राजधानी भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर संसद है, बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन है, जनता है, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं जो देश को चलाते हैं वहां से बैठ करके, तमाम ऐसी परिस्थितियों में इसको राज्य सरकार को सौंप देना, कुछ चीजों को राज्य सरकार को सौंप देना, वो निश्चित रूप से अच्छा तो लगता है सुनने में कि अगर हम इसको राज्य सरकार को दे दें तो हम क्यों ना उसको उत्तर प्रदेश की तरह जो है एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार का दर्जा उससे हटा दें। तो केंद्र सरकार का दर्जा जो है एक बहुत बड़ी चीज है, तो उनमें कुछ चीजों की सिर्फ राजनीतिक कारणों से मांग करना कि हमको इनका ट्रांसफर करने के लिए, इनका पोस्टिंग करने के लिए, या ये राइट हमको मिल जाए जो उत्तर प्रदेश में या बिहार में या जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है उन राज्यों के जो अधिकार हैं वो दिल्ली के राज्य सरकार को मिल जाएं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का जो केंद्र है वो दिल्ली है, और दिल्ली में बैठे लोगों की अगर सुरक्षा और उनके शासन प्रणाली उनके हाथ में नहीं रहेगी, तो अगर कोई ऐसी समस्या पैदा होती है तो कुछ चीजों की समस्या का निदान राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं, उसको केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो
जी
ये समस्या जब से केजरीवाल साहब की सरकार आई है तब से ज्यादा देखने को मिली। इधर जब उस जमाने में जब भाजपा की सरकार दिल्ली में होती थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, तो इस तरह की चीजें नहीं आती थी, क्योंकि आप अगर उसको या तो पूरा केंद्र सरकार को दिल्ली को आप केंद्र सरकार के दर्जे से हटाने की मांग करिए, आप पर्टिकुलर एक एक चीज की मांग करेंगे, तो ये चीज ठीक नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। और मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली को केंद्र सरकार जो जिस तरीके से चलाना चाहे, क्योंकि वो देश की प्रमुख राजधानी है, वहां पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वहां पर हमारे देश के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तमाम चीजें होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को तमाम अधिकारियों की जरूरत होती है, तमाम रिपोर्टिंग की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती हैं जो राज्य सरकार को बताना जरूरी नहीं होता है। तो इन परिस्थितियों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कोई ऐसी चीज स्पेशल चीज दे दी जाए जो चीज उत्तर प्रदेश को स्वतंत्र रूप से मिली हुई है, दिल्ली को अगर नहीं मिल रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को।
जी सर। सर एक सवाल और है कि एक राज्य को कार्य प्रणाली के केंद्र का जो हस्तक्षेप की प्रक्रिया जो है सर, वो आप ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि एक राज्य को कितने अपने क्रियान्वयन जो योजनाओं का होता है और केंद्र किस तरीके से राज्यों को इम्प्लीमेंट करती है योजनाओं का, सर उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे पाए सर हमारे श्रोताओं के लिए।
जी बिल्कुल, जैसे जो हमारी सूक्ष्म जानकारी है, हम उस जानकारी में पाते हैं कि तमाम राज्य ऐसे हैं जो अपने ही बजट को नहीं खर्च कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य का कोई एक गांव है, उस गांव का मुखिया है या गांव का प्रधान है जो चुना गया है, तमाम गांव की ऐसी पोजीशन है कि जहां पर वहां का मुखिया जो है, जो बजट उसको दिया गया है, वो बजट को नहीं खर्च कर पा रहा, वो बजट को लागू नहीं कर पा रहा, वो पूरे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा है। तो उस गांव के बजट में केंद्र सरकार की भी योजना है, राज्य सरकार की भी योजना है, दोनों के मिले जुले पैसे भी आते हैं जो विकास के कार्य में लगते हैं, जो जनता के लिए जरूरी होते हैं, और इतने प्लान होते हैं कि शायद वो गांव के लोगों को, आज भी हमारा देश इतना दिन आजाद हुए हो गया है, गांव में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको गांव के तमाम लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी सरकमस्टेंसेज में क्या होता है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और उसका लाभ जो है वो जो जो उसका पर्पज है वो साल्व हो सके। जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देखता हूँ, मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है, लेकिन मत्स्य पालन की प्रक्रिया में मत्स्य पालन का जो बजट है, जो बजट दिया जाता है, वो बजट ही नहीं खर्च हो पाता। एक स्टडी मैंने देखा था, एक आर्टिकल में देख रहा था, तो उसमें यह था कि मत्स्य पालन में जो लाभ मिलना चाहिए जनता को, उसके लिए जो बजट आ रहा है वो बजट ही नहीं खर्च हो पा रहा है, तमाम अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं इसमें, उसमें हस्तक्षेप होता है। केंद्र सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है जहां पर उसका बजट का जो वो पैसा दे रही है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उसको उसको पब्लिक में जाने नहीं दिया जा रहा है कि वो खर्च ही नहीं करना चाहते। अधिकारी उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि हम किसी इंक्वायरी में फंसे, किसी जांच में फंसे, तो वो चुपचाप अपना पड़े हुए हैं, अगर प्रेशर पड़ा तो इम्प्लीमेंट कर दिए, बाकी उन्होंने अपना बैलेंस दिखा दिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं इन सब चीजों के पीछे। तो जो हस्तक्षेप है, उनका हस्तक्षेप अगर यहाँ तक है कि योजनाओं के पॉलिटिकल नहीं है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल है कि आप केंद्र राज्य सरकार कोई चीज आपसे डिमांड कर रही है, आप उसको नहीं दे रहे हो कि अगर हम इसको दे देंगे तो ये उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी पर इन फ्यूचर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये भी तमाम रीजन होते हैं। तो इससे जो है राज्य सरकार पॉलिटिकली भी इंटरफियर कर सकती है कि ये इनकी सरकार कायदे से इम्प्लीमेंट किसी चीजों को ना कर सके। सरकार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि वो जनता को देना चाहती है और पहुंचाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार वो काम नहीं कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भारत सरकार का की जो जिस पार्टी से भारत सरकार बनी है उस भारत सरकार को जो है कोई उस पार्टी को कोई पर्टिकुलर लाभ हो जाए,
जी
तो
सर,
ये सब संबंध काफी प्रभावित करते हैं।
जी सर। सर
जी
संक्षेप में एक सवाल है और उसका संक्षेप में जवाब चाहूंगा सर। जिस तरीके से सर राज्यों में हो या फिर केंद्रों में हो, सर
जी
जीएसटी काउंसलिंग के माध्यम से या जीएसटी के माध्यम से किसी वस्तु के मूल्य बढ़ जाना और उसका जो सीधा फायदा सर उपभोक्ताओं को पड़ता है, तो महंगाई पर आपने हाल ही में बात की सर, चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये रोजमर्रा की एक उपभोक्ताओं की आवश्यक चीजें है सर, इसको किस तरीके से सर बताना चाहेंगे सर हमारे श्रोताओं के लिए?
हम आपको इस तरीके से बताना चाहेंगे इसको कि
जी
जीएसटी जो है, जीएसटी को भारत सरकार ने लागू किया है। जीएसटी का इसी पार्टी की जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक जमाने में कांग्रेस जीएसटी लागू कर रही थी तो उसका विरोध कर रही थी। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जीएसटी का एक बार सामूहिक रूप से सभी पार्टियों के साथ मिलकर इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और जीएसटी को जो सीधे जनता के पास जिसकी जिसकी जिन वस्तुओं की जनता को रोजमर्रा में जरूरत है, उस रोजमर्रा की चीजों में जैसे फल है, सब्जी बेचने वाला है, या जो क्या कहते हैं कि किराना स्टोर पे तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी रोज नीड पड़ती है, किसी को ब्रेड की, किसी को जरूरत पड़ रही है, मसाले की जरूरत पड़ रही है, उसमें गरीब आदमी ऐसा है रोज कमाता है रोज खाता है तो वो एक हफ्ते का छोटा पैकेट का मसाला लेता है, तो इन सब चीजों पर जो है जो जीएसटी लग रही है या जो अप्रत्यक्ष रूप से कर लग रहा है उस कर पर विचार करना चाहिए। लेकिन मैं जीएसटी के इस पक्ष में भी हूँ कि जैसे किसी जो है स्वर्णकार की दुकान है वो सोने चांदी का बिजनेस करता है, पहले जब वो बिजनेस करता था तो सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी जो है वो इस टाइप के बिजनेस में हो जाती थी। अब उस चोरी पर काफी कुछ रोक लगी है, अभी ये लोग टैक्स के दायरे में आए हैं तब से अब वो काम नहीं कर सकते हैं जो पहले कर लेते थे। ये तो जो जहां पर ऐसी चीजें हैं कि जिसका इस्तेमाल जो है वो उच्च मध्यम वर्गीय लोग करते हैं या जो पैसे वाले लोग जिसका उपयोग करते हैं, जैसे कुछ फैमिलीज में है वहां पर लोग पिज्जा खा रहे हैं और एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से आटा रोटी तो सभी खाते हैं लेकिन जो पिज्जा है वो कम लोग खाते हैं,
जी
तो पिज्जा खाने वालों पर जो टैक्स है उसका जीएसटी और इसके जीएसटी में इसमें भी जीएसटी लग रहा है, तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि किसको किस चीज की सबको जरूरत है और कौन कौन चीज जो है वो स्पेशल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जो है ये सभी दल मिलकर के अगर बैठक करें तो इसका निचोड़ निकालें, कोई रास्ता निकालें तो महंगाई कम हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
जी तो ये थे हमारे साथ आज लखनऊ हाई कोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं एडवोकेट इंद्र प्रताप सिंह सर। सर मोबाइल आने को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत
बड़ा
आभार।
वहन से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।